આદરણીય શિલુ દીદી, આજ અમે યાદ ઓર સેવા કે નેચર ક્યોર સેન્ટર મેં લે જા કરકે અચ્છી તરહ હીલિંગ કરાયેગી. હમ સભી આદરણીય દીદીજી કો અચ્છી તરહ જાનતે હૈ. શિલુ દીદીજી વરિષ્ઠ રાજયોગ પ્રશિક્ષિકા એવમ નિર્દેશિકા રાજયોગ શિવિર બ્રહ્માકુમારી, વાઇસ ચેરપર્સન શિક્ષા પ્રભાગ, ટીવી ચેનલ્સ મેં પ્રવક્તા, મહાસંમેલન પ્રવક્તા એવમ અનુવાદક, હમ સબ કઈ બાર જાનતે ભી હૈ, સુનતે ભી હૈ. જબ બાપ દાદા કી પધરામણી હોતી થી સદા હી ઇંગ્લિશ મેં ઇન્ટરપ્રિટેશન કા કાર્ય આદરણીય શિલુબેન જી ને વર્ષો તક કિયા. પાંચો હી મહાદ્વીપો મેં ઓર 70 સે ભી અધિક દેશો મેં આપને ભ્રમણ કિયા હૈ. 1960 મેં બહુત છોટી આયુ મેં આપકો બાબા કા પરિચય મિલા ઓર 69 મેં ગ્રેજ્યુએશન હોને કે બાદ આપને અપને જીવન કો ઈશ્વરીય સેવા મેં સમર્પિત કિયા. બેંગલોર, કાઠમંડુ, હૈદરાબાદ, મુંબઈ અનેક સ્થાનો પર આપને દેશ મેં શરૂ મેં સેવા કી. આફ્રિકન કન્ટ્રીઝ ઓર મોરિશિયસ મેં ભી કઈ સેન્ટર્સ શરૂ કરને કે લીએ આપ નિમિત માધ્યમ બની ઓર 1976 સે આપ મધુબન બેહદ બાબા કે ઘર મેં અનેક પ્રકાર કી વિશેષ વાણી કી સેવા મેં આપકા યોગદાન રહા હૈ. રાજયોગ શિબિર, કોન્ફરન્સિસ આદિ મેં વક્તા કે રૂપ મેં, અન્ય કઈ ક્લાસીસ વગેરે કે બ્રાહ્મણો કી ઉન્નતિ કે કાર્યક્રમો મેં હમ સબકો સશક્ત બનાને કા કાર્ય. આપ એક બહોત અચ્છી કક્ષા કી ઓરેટર હૈ, જિન્હોને દેશ ઓર વિદેશ મેં કઈ આત્માઓ કો નયા જીવન ઓર નઈ દિશા દી હૈ. સબસે અહેમ બાત મેં યે કહેના યહાં ચાહુંગી કે ટીવી કે દ્વારા જો બ્રહ્મા કુમારીઝ કી સેવા શરૂ હોઈ, ઇસમે સબસે પહેલા સંસ્થા કી ઓર સે માધ્યમ આદરણીય શિલુ દીદી રહી. 1993 મેં ટીવી કે માધ્યમ સે વિશેષકર મૂલ્યો પ્રતિ જન જાગૃતિ લાને કે ભગીરથ કાર્ય કી શરૂઆત કરને વાલી આપ પ્રથમ બ્રહ્મા કુમારી બહેન હૈ. આપકે પ્રવચન ઝી ટીવી, સોની ટીવી, આસ્થા તથા સંસ્કાર ચેનલ્સ પર કઈ વર્ષો તક લગાતાર પ્રસારિત હોતે રહે. વર્તમાન સમય હમારી અપની ટીવી ચેનલ પીસ ઓફ માઇન્ડ પર આપકે નિયમિત રૂપ સે સેશન્સ આ રહે હૈ. તો મેં આદરણીય દીદીજી સે અનુરોધ કરુંગી કે આજ કા જો હમારા વિષય હૈ યાદ ઓર સેવા દ્વારા નેચર કી ઓર, ઇસ વિષય કી ડેપ્થ મેં હમે લે જાય ઓર સચ હી હમારે ઇસ પુરાને નેચર કો ક્યોર કરને કી, પરિવર્તિત કરને કી એક સુંદર ઓર સહેજ વિધિ હમ આપસે જાન પાએ. આદરણીય દીદીજી,
ઓમ શાંતિ. આજકલ હમારે ભારત મેં ખાસ નેચર ક્યોર સેન્ટર બહોત બનતે જા રહે હૈ. પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા કે કેન્દ્ર ચારો ઓર ખુલતે જા રહે હૈ, ક્યોંકિ બીમારિયાં ભી બહોત બઢતી જા રહી હૈ. તો જો ભી દવાઈયાં કામ આની ચાહીએ વો ભી કઈ બાર કામ નહીં કરતી. એલોપેથી સે તો કઈ પરેશાન હો ગયે હૈ, ક્યોંકિ ઉનકે સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ભી બહોત હોતે હૈ. તો ફિર આયુર્વેદિક, હોમિયોપેથી ઓર નેચરોપેથી મેં જાતે હૈ ઓર કઈ નેચર ક્યોર સેન્ટર્સ મેં જા કરકે બહોત પ્રાકૃતિક તરીકો સે અપને તન કો દુરુસ્ત બનાને લીએ પ્રયત્ન કરતે હૈ. क्योंकि ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो जो जिससे ये शरीर बना है वही प्रकृति की ही चीजें इस्तेमाल करके शरीर का क्योर, उसकी शफा करते हैं। और देखा गया है कि कुछ हद तक ये सफलता तो मिलती है, परंतु अगर हम देखें कई ऐसे भी हैं जो अपना मोटापा कम करने लिए भी ये नेचर क्योर करते हैं, कच्चाई खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कई वेगन्स भी है, अनाज नहीं खाते हैं, कोई तो मीठा तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, कई केवल कच्ची सब्जियां ही खाते हैं। क्योंकि शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है तो प्राकृतिक चीजें चाहिए, इसलिए तला फला आदि आदि जो कुछ, या तेल और ज्यादा तली हुई चीजें अवॉइड करते हैं। तो ये तो अच्छा ही है, क्योंकि शरीर को वैसे भी देखा जाए बहुत भोजन तो चाहिए नहीं। किसी ने हमें बहुत सुंदर कहा कि पेट तो एक ही है, पेट को तो ज्यादा चाहिए नहीं। तो उसने क्या बताया, जैसे जितना आपका हाथ है ना उतना ही पेट को भी चाहिए, बस पेट उतना ही है। इसीलिए अगर ज्यादा खाएंगे तो या तो बदहजमी हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, बहुत कुछ बीमारियां आ सकती है। इसीलिए कहते हैं कम खाओ और गम खाओ, कम खाओ और गम खाओ, सहन शक्ति धारण करो। तो नेचर क्योर जो शरीर का करते हैं वो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। कई प्राणायाम करते हैं, हठ योग करते हैं, आसन करते हैं इस लक्ष्य से कि शरीर तंदुरुस्त बने। और बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे शरीर के रोगों का कारण मन है। वास्तव में वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, 80 से 90% जो शरीर के रोग है वो साइकोसोमेटिक है। साइको माना पहले मानसिक स्थिति और फिर शारीरिक। तो 80-90% शरीर के रोगों का कारण मन है। अब लोभ होगा तो खूब खाएंगे, लेकिन संयम रखेंगे तो कम खाएंगे। पर कोई चीज टेस्टी देखी तो ज्यादा खा लिया, डॉक्टर ने कहा तुमको डायबिटीज है, शुगर है, मीठा नहीं खाना है। तो देखिएगा, कोई देख तो नहीं रहा है तो एक मुंह में डाल देगा, कोई देख नहीं रहा है कि देखिएगा दूसरा भी, कोई देख नहीं रहा है तो दूसरा भी डाल देगा, क्योंकि जीभ रस है ना। तो जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, इन पंच तत्वों के जो रस है वो मन को आकर्षित करते हैं, फिर चाहे कितना भी नेचर की ओर कराओ। तो मन को तो वश में किया ही नहीं है, गुस्सा कर लेते हैं तो जो कुछ अंदर में शक्ति भरी वो गुस्से से सारी शक्ति निकल जाती है। तनाव में रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं, ज्यादा कमाई कमाई कमाई, बस कमाई है, धन चाहिए धन चाहिए, लोभ वश है, और उसके लिए फिर टेंशन, कितनी चिंताएं हैं। क्योंकि सरल तरीके से तो कितना धन कमाएंगे, परंतु गलत तरीकों से तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर अंदर में मन खाता भी है कि हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो अंदर ही अंदर मन से दुखी भी रहते हैं। छल कपट, निंदा चुगली, बेईमानी, हेरा फेरी, भ्रष्टाचार, न जाने क्या क्या बस किसी भी तरह से धन कमाएं। तो जब आज की दुनिया में हम देखते हैं मनुष्य की ऐसी स्थिति हो गई है, इतना देह अभिमान के वश हो गया है, इतनी तमो प्रधानता आ गई है और प्रकृति भी तमो प्रधान स्वरूप ही है, परंतु 80-90% जो शरीर के रोग मन के कारण है उनको सुधारने का तो कोई प्रयास ही नहीं करते। हाँ, 10% कोई और कारण से होंगे, चलो 20%, क्योंकि आजकल प्रदूषण भी बहुत है। हाँ, कितना प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, कान ही बहरे हो जाते हैं। तो चारों ओर प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड ही ले रहे हैं अंदर। तो इसके कारण शरीर के रोग बढ़ जाते हैं और टेंशन के कारण तो हार्ट पर भी असर पड़ता है, ब्रेन पर असर पड़ता है, हार्ट फेल भी हो जाते हैं, ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। इसीलिए पहले मन का इलाज चाहिए। इसलिए डॉक्टर्स के पास जब मरीज जाते हैं तो क्या कहते हैं डॉक्टर, उनकी बीमारी सब सुन करके फिर यही कहेंगे ना, चिंता मत करो, हाँ दवाइयां देंगे, ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। लेकिन चिंता तो मन की स्थिति है, वो मन को कैसे सुधारो वो तो बताते ही नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा क्या कहते, अगर आप डॉक्टर हो तो डबल डॉक्टर बनो, केवल सिंगल डॉक्टर नहीं, दवाइयां देते जाओ। आजकल डॉक्टर्स केवल दवाइयां ही देते जाएंगे, इतनी लिस्ट बना देते हैं दवाइयों की, पर मन को कैसे सुधारो वो तो बताते ही नहीं है। और बाबा तो बहुत बड़ा चिकित्सक है, उसने क्या हमें इलाज दिया है, मन को कैसे सुधारो। मन मना भाव होंगे तो मन को सुधार सकेंगे। जो बाबा कहते हैं मन मेरे में लगाओ, एक शिव बाबा में मन लगाया, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और उनसे शक्ति ली तो मन में इतनी शक्ति आ जाएगी जो ये सब देखते हुए भी नहीं देखेंगे, क्योंकि अंतर में भरपूर हो गए। अभी अंतर में मनुष्य खाली है, एकदम खाली। तो कई बार जब हम उनको कहते ना, अंदर जाओ, अंदर देखो, अंदर झांको, आपको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, सब आपके अंदर है, अंदर में जाओ, तो उनको बहुत डर लगता है, डर लगता है उनको, क्योंकि अंदर खाली है। अब खाली है तो क्या अंदर जाओ, उनको पता ही नहीं ना। और आत्मा के अंदर जाना ये तो बिल्कुल ही पता नहीं है, क्योंकि शांति, प्रेम, खुशी को शरीर में थोड़ी मिलेगी, वो तो आत्मा की चीज है। और आत्मा का ज्ञान न होने के कारण वो अगर सोचते भी है कि हम अंतर जाएं और एकदम मन को शून्य बनाने की कोशिश करते हैं, तो मन तो शून्य होता नहीं। श्रेष्ठ विचार, शुद्ध विचार, शुभ विचार, समर्थ विचार क्या होते हैं वो तो उनको पता ही नहीं। तो या तो खालीपन है अंदर, या तो इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे विकार अंदर भरे हुए हैं, तो वो डर लगता है उनको अंदर जाने में। जैसे कोई सुनसान रास्ते पर जाओ जाए तो भी डर लगता है, और इतनी भीड़ भड़ाके में जाए तो भी डर लगता है। तो इसीलिए मन में भी इतनी हलचल, जो कहां ढूंढे शांति, प्रेम, सुख और खुशी। जैसे किसी कबर्ड में ढेर सारी चीजें पड़ी हो, सब बेकार, पर उसमें आपने एक हीरा भी रखा हो, अब हीरे को कहां ढूंढेंगे, इतनी छोटी डिब्बी कहाँ ढूंढेंगे, सारा तो किचरा भरा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या, और ऐसा अंदर में डाल दिया है और दरवाजे को, कबर्ड के दरवाजे को ऐसा बंद कर दिया है जो खोलने में भी डर लगता है कि खोलेंगे तो सारा गिर जाएगा होता है ना, बहुत भरा हुआ है कबर्ड और उसको जैसे खोलो तो क्या होता है, सब नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए उसमें हीरा कहाँ है वो कहाँ ढूंढेंगे आप। तो बाबा हम बच्चों को कितनी सुंदर युक्ति बताते हैं कि पहले मन का नेचर क्योर करो, क्योंकि नेचर शब्द के दो अर्थ हैं। एक नेचर है ये प्रकृति की नेचर, ये पांच तत्व, ये भी नेचर है, प्रकृति है। और दूसरा नेचर का अर्थ होता है स्वभाव। हम किसके लिए कहेंगे ना, इसका स्वभाव, इसकी नेचर बहुत अच्छी है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। कईयों के लिए यहाँ तक कह देते ये तो जैसे देवता है, क्योंकि बहुत अच्छे गुण है उसके अंदर। तो जो गुणों से संपन्न होता है वो टेंशन से भी फ्री रहता है, उसके अंदर शांति खुशी सब होते हैं, नेगेटिव से भी वो दूर है। तो बाबा हम बच्चों को कैसे परिवर्तन करते हैं, हमको इतनी ऊंची सोच दे करके, ये सारा ज्ञान जो शिव बाबा ने हमें दिया है, बाबा कहते उसका चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो, यही मन में लाओ। और जैसे ये मन में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो किचरा है वो निकल जाएगा, या जो खालीपन लगता है अंदर वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्ञान का भंडार आपके पास है। ये सारे खजाने हैं जो बाबा ने ज्ञान का खजाना हमें दिया है, गुणों का खजाना दिया है, शक्तियों का खजाना दिया है। फिर बाबा उसमें और ऐड करते हैं, समय भी एक खजाना है, तो समय रूपी खजाना है, श्वास भी हमारा खजाना है, क्योंकि ये संगम युग बहुत अमूल्य जीवन है। इस संगम युग का हर क्षण अति कीमती है। तो जब बाबा हम बच्चों को ये सब बातें सुनाते तब महसूस होता है कि हम तो अपना कितना समय, श्वास, संकल्प शक्ति व्यर्थ गंवा रहे हैं। कई कहते हैं ना हमको टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, तो बाबा कहते हैं टाइम तो निकालना पड़ता है, ऐसे थोड़ी कि टाइम नहीं मिलता है माना हम आत्मा के कल्याण के लिए कुछ न करें, तो लोगों को हम बोलते हैं ना। और कितना टाइम व्यर्थ बातों में जाता है, वो व्यर्थ खत्म हो जाता है बाबा का बनने से, क्योंकि बाबा कहते देखते हुए नहीं देखो, ये दुनिया मरी पड़ी है, सब मरे पड़े हैं, तो देखते हुए नहीं देखो। अब कहां पर एकदम मुर्दे पड़े हो, आपको देखने की भी दिल नहीं होगी, और सुनते हुए भी नहीं सुनो, क्योंकि दुनिया में क्या सुनाते हैं, सब अज्ञान ही सुनाते हैं। तो देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, अंदर में अपनी धुन में रहो और कर्म भी करो, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म भी करो, लेकिन कर्म करते हुए बाबा की याद में रहो, जिसको ही कर्म योग कहा गया है। तो ये विधि बाबा हम बच्चों को देते हैं, और याद और सेवा से पहले अपने स्वभाव को चेंज करो, क्योंकि याद की शक्ति से हम अपने मन को स्वच्छ करते हैं। मन का शुद्धिकरण चाहिए, तो कैसे करेंगे मन का शुद्धिकरण, इसलिए बाबा उसकी कितनी युक्तियां बताते हैं कि जब भी मन में कोई नेगेटिव विचार आए तो क्या करो, नहीं, नॉट, NOT, नॉट। और मन में वो जो नेगेटिव विचार किसके बारे में भी आएगा, चाहे अपने बारे में भी, उसको एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकेंगे। अपने लिए भी बाबा यही कहते कि अपने स्वमान में रहो। नेगेटिव कैसे सोचते अपने लिए, मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, हाँ मैं तो, मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, मेरे अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है, हाँ मेरे अंदर कुछ भी शक्ति नहीं है, मैं कोई निकम्मा हूँ, ऐसे ऐसे कई सोचते हैं। दूसरों को देखते हैं कि वो तो कितना आगे बढ़ गया, मैं तो पीछे रह गया। तो दूसरों को देखने में ही अपना समय डाल लगाते हैं, फिर ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी उसमें फंस जाते हैं। और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे दूसरे किसी को मत देखो, अगर देखना भी है तो अपने को ही देखो। और अगर पुरुषार्थ तेज करना है तो दूसरे को देख करके पुरुषार्थ नहीं होगा, क्योंकि दूसरे को देखेंगे अगर उसका पुरुषार्थ बहुत तेज है और मेरा नहीं है तो अंदर में हीनता की भावना आएगी, हाँ मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, वो देखो कितना पुरुषार्थ अच्छा कर रहा है, तो हीनता की भावना आएगी। और अगर आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा है और दूसरे का कम है तो अभिमान आएगा, देखो मैं तो अमृत वेले उठता हूँ, मैं तो कभी मुरली नहीं मिस करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, ये देखो ये तो कुछ भी नहीं करता है, हा? तो दूसरे से उस रूप से कंपेयर किया तो अभिमान आता है। तो किसी दूसरे के पुरुषार्थ से अपने पुरुषार्थ की भेंट की तो क्या होगा, या तो अभिमान आएगा या तो हीनता की भावना आएगी। लेकिन अपने पुरुषार्थ से ही अपनी भेंट करो। कैसे भेंट करेंगे? अपने पुरुषार्थ से। समझो आपके आगे कोई परिस्थिति आई, कल किसने आपको कुछ कुछ बुरा कहा, कुछ भी कहा, मानो कल आपको बहुत गुस्सा आ गया, क्यों मुझे ऐसे कहते हो, मैंने इसे क्या किया। और आज फिर दूसरे ने कुछ ऐसा कहा, लेकिन आज मुझे गुस्सा नहीं आया, आज मैं एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, आज मैं एकदम शांत रहा, गुस्सा नहीं आया। तो कल से आज मेरी स्थिति अच्छी हो गई ना। आज मेरे अंदर सहन शक्ति थी, कल तो थी नहीं। कल में मुझे किसी ने कोई बात कही और कहा कि ये किसको कहना नहीं, पर मैंने कल कह दिया, पेट में नहीं संभाल सका। पर आज मैंने किसी को नहीं कहा, कोई और बात हुई, पेट में संभाल लिया या उसको भूल गए। तो कल मेरे अंदर ये शक्ति नहीं थी, ये गुण की अनुभूति नहीं थी, आज है, चलो परसेंटेज में ही सही, लेकिन कल से आज मेरी स्थिति बेहतर है। तो अपनी भेंट अपने आप से ही करो, तब आपकी उन्नति होगी। दूसरों से भेंट करेंगे तो आपकी उन्नति नहीं होगी। कई तो फिर जब भेंट करते हैं ईर्ष्या होती है, तो क्रिटिसाइज भी करेंगे दूसरों का अपमान भी करेंगे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ। बाबा कहते हैं सब पाप के खाते में जाता है। और जब इस प्रकार के पाप करते रहते हैं, क्योंकि ये सब देहाभिमान के वश है, देहाभिमान के वश जो भी कर्म होगा ना, वो सब पाप के खाते में जाएगा। इसीलिए बहुत सुंदर कहावत भी है ना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, धर्म का मूल दया है। क्षमा करो और भूल जाओ, पर पाप मूल अभिमान, पाप की जड़ अभिमान है। तो हम कई बार बताते हैं ना, पाप के दो दरवाजे हैं, एक है मैं और दूसरा है मेरा। मैं और मेरा, ये पाप के दो दरवाजे हैं। अभिमान वश मैं और लोभ वश मोह वश मेरा। और बाबा क्या कहते हैं, मैं कहते हो तो जब मैं याद आए तो किसको याद करो, मैं कौन आत्मा। अब मैं आत्मा समझा तो सब आत्माएं हैं। हर एक आत्मा गुणों से संपन्न है, हर एक आत्मा अपने असली रूप में शुद्ध है, कोई भी ये शुद्ध नहीं है। तो हर आत्मा का असली स्वभाव क्या है वो हम देखेंगे, वो हम अनुभव करेंगे। फिर बाबा कहते मेरा 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 कहने की आदत है तो क्या कहो, मेरा बाबा, बस एक बाबा ही मेरा है, बाकी तो कुछ भी मेरा नहीं है। यहाँ तक कि बाबा कहते ये शरीर भी मेरा नहीं है, जिस शरीर का इतना श्रृंगार करते हैं, क्या नहीं इस शरीर के लिए करते हैं, वो भी मेरा नहीं है, वो भी धोखा दे देगा। इसीलिए इस स्वभाव को, इस नेचर को क्योर करना है। मैं और मेरे का जो नेचर बन गया है ना स्वभाव, वो क्योर करना है। उसका इलाज क्या है, मैं आत्मा मेरा बाबा, बस। तो इससे क्या होगा, टेंशन खत्म, बाबा मेरे साथ है, बस। कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी बोझ हुआ, लो बाबा आप देखो, आप जानो, तो चिंता भी खत्म, बोझ खत्म। हजार भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है। कौन मेरे साथ है? भगवान मेरे साथ है तो चिंता की क्या बात है। तो जब ये अंदर में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली मन कितना शांत हो जाता है। तो एक तरफ तो बाबा कहते हैं नॉट, जब कोई ऐसे नेगेटिव विचार आए नॉट, नहीं। और दूसरा अगर बात हो गई तो फिर बाबा कौन सा शब्द देते हैं? डॉट, बिंदु, बिंदु लगा दो, चलो हो गया, जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। तो जैसे ड्रामा का इतना पक्का हो ज्ञान जो हम बिल्कुल हिले नहीं। नहीं तो मनुष्यों की आजकल नेचर इतनी सेंसिटिव हो गई है, खास करके युवा पीढ़ी की हम देखते हैं, अंदर में सहन करने की ताकत ही नहीं रही। पहले जमाने में माता पिता जो कहते थे, बच्चे बड़े भी थे वो भी आज्ञाकारी थे माता पिता के, जो माता जी कहे जो पिताजी कहे कितने आज्ञाकारी। तो कहा जाता था बड़ों को रिस्पेक्ट दो और बच्चों को प्यार दो, क्योंकि बच्चे तो प्यारे होते कोमल फूल होते। लेकिन आजकल जमाना बदल गया है, हम बच्चों को भी कुछ नहीं कह सकते, बच्चे भी प्यार नहीं मांगते वो भी रिस्पेक्ट मांगते हैं। अगर किसी बच्चे को कह दो बेटा ये तुमने ठीक नहीं किया, बस गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आ गया, सहन करने की शक्ति नहीं है। तो आजकल ये भी नहीं कह सकते हैं, और सहन करने की शक्ति नहीं है तो पता नहीं क्या से क्या कर लेते हैं। आजकल युवा पीढ़ी कितना सुसाइड कर लेती है, किसी ने कुछ छोटी सी बात कह दी बस बस मरना है मरना है मरना। इतना सस्ता हो गया है, सस्ता हो गया ना। और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ये जीवन कितना अमूल्य है, अगर बुढ़ापा आ जाए तो भी चलाओ उसको, चक्तियां लगा के भी चलाओ, भले बेड पर पड़े हो बाबा को याद करोगे आपका पाप नाश होगा। अगर ये कहेंगे अभी बस शरीर जल्दी छूटे तो फिर नया जन्म लेंगे, फिर कितने साल के होंगे, फिर कितना समय चला जाएगा। इसलिए ये जीवन कितना अमूल्य है इसका कदर करना है, इसको संभालना भी ठीक है। फिर बाबा कहते हैं कुछ दवा कुछ दुआ, ये नहीं नेचर क्योर है माना मैं दवाई नहीं खाऊंगा, कुछ तो लेना पड़ेगा ना, पर बाकी नहीं तो दुआएं कमाओ। अगर दुआएं नहीं कमाते हैं तो फिर दवा खानी पड़ेगी, क्योंकि शरीर के रोग जो भी लगते हैं है तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब। अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ है, अगर हमारे विचार श्रेष्ठ है, हमारी भावनाएं श्रेष्ठ है तो कितनी बीमारियों से बच जाते हैं, क्योंकि शांति में रहते हैं खुशी में रहते हैं। तो याद नेचर क्योर के लिए, स्वभाव के क्योर के लिए बहुत सुंदर औषधि है। सब कहा जाता है ना अमृत धारा, 100 बीमारियों की एक दवा। तो बाबा भी कहते हैं बस मुझे याद करो, मेरी याद से तुम इतने एवर हेल्दी बन जाएंगे, क्योंकि मन एकदम शांत हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन खत्म, नॉट और डॉट लगा दिया। फिर बाबा कहते बोझ मुझे दे दो, तुम अपने सिर पर क्यों उठाते हो, बच्चा बहुत परेशान करता है, बाबा को दे दो ये प्रॉब्लम, आप क्यों उठाते हो बोझ। कई बार हम इतना उठा लेते बोझ, मेरा बच्चा है ना, मुझे ही तो देखना है ना, क्या करूं बहन जी परेशान हो गई हूं उससे, आप क्यों सोचते हो मेरा बच्चा है? ये तो आपके कोई जन्म का हिसाब किताब है, तभी तो बच्चा बन के आपके घर में आया। और सचमुच ये कितनी बड़ी वास्तविकता है कि जब हिसाब किताब पूरा होता है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, न बाप न बेटा। तो जब बाबा ने इतना ऊंचा कर्मों का ज्ञान दिया है और बाबा कहते सब संबंध मेरे से जोड़ो, तो फिर बाबा कहते दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, ये सब अंतिम हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आ रहे हैं। बस अब घर चलना है, अब घर जाना है। नया कोई भी हिसाब किताब बनाओ मत, इतना ज्ञान बाबा हमें देते हैं। और अपने स्वमान में रहो, हमारी दादी जानकी जी कितने स्वमान में रहती थी, 3 बार ओम शांति कह करके इतना स्वमान याद दिलाती थी, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, दादी कहती थी ना। तो मैं कौन, आत्मिक नशा चढ़ गया, मेरा कौन, परमात्मा का नशा चढ़ गया, मुझे क्या करना है, अपना कर्तव्य भी पालन करना है, पर एक एक्टर की भांति हमें पार्ट भी बजाना है, पर फंसना कहीं भी नहीं है। इसलिए न्यारा प्यारा भी होकर रहना है, क्योंकि बाबा के साथ संबंध है मेरे, अकेला नहीं हूं मैं। कहीं अकेला हूं ये सोच के भी दुखी होते, सब मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन जो योगी होगा वो कहेगा छोड़ के चले कहाँ चले जाएंगे, यहीं होंगे, पर मेरा सच्चा साथी तो मेरे साथ है, मैं तो आत्मा उसकी सजनी हूँ, वही मेरा सच्चा साजन है, वही मेरा सच्चा दिलवर है, वही सत्यम शिवम सुंदरम, मैं तो उसकी हो गई, उसका हो गया। तो फिर बुद्धि और कहीं नहीं जाती है, और उससे मन कितना शांत हो जाता है, कितनी खुशी अंदर में आती है कि मेरा कौन है, जिसको दुनिया पुकार रही है उस वो मेरा हो गया है, मैंने उसको पा लिया है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, पाना था सो पा लिया, अब और क्या काम बाकी रहा, और कुछ भी नहीं पाना है। इस कलयुगी दुनिया की इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, ये सब क्षण भंगुर है। इसलिए बाबा कहते हैं एक आंख में रखो मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, बस ये 2 आंखें केवल वही देखे, बस घर को देखे नहीं दुनिया को देखे, हम जा रहे हैं, और छोड़ना कुछ भी नहीं है, पर फंसना भी कहीं नहीं है, यही तो कला बाबा सिखाते हैं। इसीलिए याद में रहना, याद करना, बाबा को सच्चा साथी बनाना, ये बहुत बड़ी कला है, जिससे ये तन और मन इतना शक्तिशाली बन जाता है। फिर बाबा कहते हैं सेवा करो, अपने को देखो, पुरुषार्थ करो, पर दूसरों की सेवा करो, क्योंकि सेवा से भी शक्ति आती है, सेवा बहुत बड़ा पुण्य है। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, वाचा से सेवा, कर्मणा से सेवा, ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो सेवा है, उससे भी आत्मा शक्तिशाली बनती है, क्योंकि वो बाबा की सेवा है। अगर घर में भी रहते हैं तो भी, अगर ट्रस्टी होके रह रहे हैं, सब बाबा का समझ कर चल रहे हैं, तो वो भी घर में भी वो सेवा है, वो बोझ नहीं लगता। सेवा शब्द जब यूज करते हैं ना, तो बोझ नहीं लगता है। बाबा के घर में कितनी सेवा हो रही है, सारा दिन सब्जी कटती रहती है, सारा दिन रोटियां पक रही है, सारा दिन चल रहा है ना, कितना कारोबार चल रहा है, सब सेवा समझ करके कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं। बार इतने हल्के रहते, कितने न्यारे प्यारे रहते हैं। कई लोग आते हैं ना तो देखते हैं हमारे मधुबन वालों को, ये लोग कितना खुश रहते हैं, कितना खुश रहते हैं। तो पूछते आप लोगों को क्या मिला, इतना खुश क्यों है? अरे क्या नहीं मिला वो पूछो ना। क्या मिला ये नहीं पूछो, क्या पूछो क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला। तो फिर काहे की खोज, अभी कोई खोज नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। परंतु हमने जो पाया है वो भी पाए, उसको भी मिले, इसलिए सेवा करना भी बहुत जरूरी है। दो कारणों से सेवा करना बहुत जरूरी है। पहला कारण है कि उसका भी भला हो जाए, अंदर में भावना बहुत ऊंची है, शुभ भावना शुभ कामना सब आत्माओं के लिए, जो मुझे मिला है वे मैं सबको बांटूं, और जितना बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ेगी, क्योंकि उनकी दुआएं मिलेगी। वो दुआएं पाना ये भी एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। कई लोगों से हम पूछते हैं, भाई साहब बहन जी कुछ चाहिए? कहते बहन जी कुछ नहीं चाहिए, भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, बस आपकी दुआएं चाहिए। क्या कहते? आपकी दुआएं चाहिए। तो दुआएं पाना ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, और ये दुआएं हमारे पुरुषार्थ को कितना आगे बढ़ाती है, हमें उड़ाती है दुआएं। क्योंकि एक तरफ है दुआएं, और अगर हमारे कर्म सही नहीं है, हम दुख दे रहे हैं अनेकों को, तो बददुआएं भी मिलेगी, तो बददुआएं हमें कहाँ ले जाएगी और दुआएं कहाँ ले जाएगी। तो बददुआ तो किसी से न मिले, दुआ मिले, बस यही लक्ष्य रहता है। इसीलिए सेवा करना बहुत जरूरी है, वो पुण्य का खाता बनता है। तो पहली बात कि जितनी सेवा करेंगे उतना पुण्य का खाता बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। आप किसी को शांति का दान देंगे तो आपकी शांति बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप किसी को खुशी देंगे, अच्छी सुंदर बातें सुना के उसकी खुशी बढ़ी तो आपकी खुशी भी बढ़ेगी। कुछ उनकी सेवा की, उनकी दुआएं ली, आपकी खुशी बढ़ेगी। अपने पुरुषार्थ में आपको सहज फल मिलेगा। कई बार होता है ना कि हम थोड़ा निराश है, उदास है, थोड़ा दुखी है, पता कुछ कारण से, और उसी समय हम किसी की सेवा जाके करते हैं, बाबा का ज्ञान उनको देते हैं, उनको कैसे मेडिटेशन करना वो बताते हैं, शिव बाबा की पहचान देते हैं, और जैसे ही उनको पहचान देते हैं उनको कितना अच्छा लगता है। तो उनको तो अच्छा लगता है, वो तो होगा ही, लेकिन हमें भी कितनी खुशी होती है, इतनी शक्ति मिलती है क्योंकि किसी की सेवा की। इसलिए जितना देने में सुख होता है ना, उतना लेने में नहीं। अभी ये थोड़ा सोचना होगा, कई समझते लेने में सुख है, जितना मिले उतना अच्छा। तो जितना मिले लेने में सुख, वो तो भिखारी है। पर जो देने में सुख महसूस करता है वो तो राजा है। राजा क्या करता है, वो तो देता है, क्योंकि लेना तो बाबा से है और वो भी हमारा अधिकार है, हम मांगते थोड़ी हैं। बाबा शांति दो, शक्ति दो, भक्त लोग तो मांगते हैं, हम मांगते नहीं शांति दो शक्ति दो बाबा, ऐसे मांगते हो क्या? मांगते हो बाबा से, बाबा शांति दो, हाँ बाबा खुशी दो। अरे वो तो सब मेरे पास है, मेरा अधिकार है। हम यही कहते हैं ना, शांति तो मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरा स्वभाव ही शांति है, मेरा पिता शांति का सागर है, मेरा घर शांति का धाम है, तो मैं बाबा से मांगूंगी थोड़ी, बाबा दुआएं करो, नहीं आप सेवा करो, दुआएं अपने आप मिलेगी। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे कहेंगे आशीर्वाद करो, बाबा कहते हैं आशीर्वाद खुद अपने आप पर करो। अब किसी के पास जाएंगे कहेंगे अपना हाथ मेरे सिर पर रखो, आशीर्वाद करो, चलो रख भी दिया, और अगर खुद के कर्म अच्छे नहीं है तो वो आशीर्वाद क्या काम करेगी, करेगी कुछ काम? तो हम सोचते हाँ हमारे तो गुरु जी ने हमारे पर आशीर्वाद कर दी, फिर भले कितने भी पाप कर्म करते रहो कोई आशीर्वाद काम नहीं करती है। इसलिए बाबा कहते खुद अपने सिर पर आशीर्वाद करो, खुद अपने आप को आशीर्वाद दो। कैसे दो आशीर्वाद? जो शिव बाबा की श्रीमत हमें मिलती है, मुरली में सब श्रीमत आती है, उठो कैसे, बैठो कैसे, चलो कैसे, खाओ कैसे, सो कैसे, सोचो क्या, सब श्रीमत बाबा देते हैं, उस अनुसार चलो, अपने आप आपको आशीर्वाद बाबा की भी मिलेगी, खुद की भी मिलेगी। बाबा का दिल तख्त भी जीत लेंगे, खुद को भी संतुष्ट रख सकेंगे और सारे परिवार का भी दिल जीत सकेंगे। इसीलिए मांगो, मांगना तो कुछ है ही नहीं, भक्ति मार्ग में तो मांगना ही मांगना था, अब ज्ञान मार्ग में बाबा कहते देना है, देना है, देना है। एक कहानी सुनाते ना, जोक है कि दो व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत भगवान की भक्ति की, बहुत भक्ति की, तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने पूछा आपको क्या चाहिए, हाँ क्या चाहिए, हाँ क्या चाहते हो आप? तो उन्होंने एक ने कहा, भगवान मैं सदा ही लेता रहूं, लेता ही रहूं, लेता ही रहूं, लेता ही रहूं, मुझे ऐसे देते ही रहो आप, मैं लेता ही रहूं। और दूसरे ने कहा, भगवान बस मुझे ऐसा बनाओ जो मैं देता ही रहूं, देता ही रहूं, देता ही रहूं। तो जिसने कहा मैं लेता ही रहूं, उसको भिखारी बना दिया। भिखारी क्या करता, लेता ही रहता है ना, ऐसे हाथ हाथ फैला करके लेता ही रहता है। और जिसने कहा मैं देता ही रहूं, उसको तो अमीर बना दिया, देते रहो, देते रहो, देते रहो, तो वो तो और अमीर बन जाएगा, देने से तो अपने आप मिलता है। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तो दाता के दर तो खाली कभी होते ही नहीं। तो इसीलिए बाबा हमें क्या कहते हैं, मांगो कुछ भी नहीं, इसलिए मांगने से मरना भला, क्योंकि हम देवता बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं, तो देवता माना देने वाला। तो जब अंदर में ये सेवा की लगन होती है, ऑटोमेटिकली पुण्य का खाता जमा होता है, ऑटोमेटिकली दुआएं बढ़ती है, और वो दुआएं हमारे हेल्थ को, हमारी तबीयत को भी अच्छा रखती है। इसीलिए जो बाबा ने उस दिन कहा, याद और सेवा से नेचर क्योर, आपकी जो मन की स्थिति है वो नेचर, स्वभाव आपका, संस्कार आपका, वो भी बदल जाएगा। हाँ मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, ऐसे कहने से बदलेंगे नहीं, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मैं कैसे निकालूं गुस्सा, ऐसे गुस्सा नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा गुस्सा? जब उसका ऑपोजिट सोचोगे। ऑपोजिट कैसे? मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो गुस्सा अपने आप खत्म। मुझे गुस्सा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसे कहने से थोड़ी गुस्सा जाता है। मुझे लोभ नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, ऐसे कहने से लोभ नहीं जाता है, पर अंतर में मैं इतनी संतुष्ट हूं, इतनी भरपूर हूं कि कहीं भी आंख नहीं जाती है, कहीं भी आंख नहीं दुखती है, कोई आकर्षण नहीं, कोई कितना भी प्रलोभन दे पर कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो ये है याद और सेवा द्वारा अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों को बदलना। कई कहते हैं कि मैं तो अपना स्वभाव बदल ही नहीं सकता हूँ, ये संस्कार तो मेरे बदलते ही नहीं है, मेरे पुराने संस्कार है, कैसे बदलू कैसे बदलू, बस कैसे कैसे केवल करते रहते हैं। और बाबा कहते कैसे मत कहो, ऐसे कहो, क्योंकि तरीका बाबा ने बताया है कैसे करना होता है, इसीलिए कैसे कैसे कह के बैठ मत जाओ, पर ऐसे करना है जो बाबा की श्रीमत मिलती है उस अनुसार हमें करना है। अमृत वेले उठ नहीं सकता हूँ, अमृत वेले कैसे उठूं कैसे उठूं, नींद खुलती नहीं, लक्ष्य रखो, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, मुझे उठना ही है। और बाबा को कह के सो, बाबा मुझे 3 बजे उठना है। अब आपने बाबा को ऑर्डर किया, भगवान आपका ऑर्डर एकदम मानेगा, आपकी खटिया हिलेगी, 3 बजे उठो बच्चे उठो, बाबा आपका आज्ञाकारी बनेगा। परंतु आप एक सोच के सोए, पता नहीं मैं उठ सकूंगा नहीं उठ सकूंगा, पता नहीं यहाँ अमृत वेले मेरा अच्छा होगा या नहीं होगा, तो पता नहीं ये शब्द का तो पता कट जाएगा, पता ही कट जाएगा, करना ही है। इसीलिए बाबा कितनी बार मुरलियों में कहते, अंडरलाइन करो, डिटर्मिनेशन, करना ही है। और फिर बाबा कहते करना ही है केवल नहीं, सदा करना है, सदा, ये सदा भी ऐड करो, तो दृढ़ता और सदा, नहीं तो माया तो खड़ी है इंतजार कर रही है खींचने के लिए, बस माया को तो मौका चाहिए। कल भी बाबा ने कहा, कल या परसों, थोड़ा बाबा की याद भूली माया अपनी ओर खींचेगी, वो तो इंतजार कर रही है ये थोड़ा भी बाबा को भूल जाए तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। हाँ, छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ का हाथ छोड़ करके पता नहीं कहाँ चले गए, और माँ का ध्यान किस में रहता है, अपने मोबाइल में ध्यान है, और बच्चे का हाथ कब छूट गया पता ही नहीं चला, वो तो मोबाइल में ही देख रही है, और पीछे से कोई आया बच्चे को उठा के ले गया, वो तो अपने मोबाइल में ही बिजी है, फिर आगे पीछे देखती बच्चा कहाँ गया, अरे तुमने तो हाथ ही छोड़ दिया, बच्चे का हाथ तो छूट गया तुमको पता ही नहीं चला। तो हम भी बाबा का हाथ छोड़ देते हैं तो क्या करेगी माया, हैं? उठा के ले जाएगी। इसीलिए बाबा का हाथ कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ माना कुछ भी, बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। बाबा ने इतना हमें दिया है, अगर ये छोड़ा तो सब सब खाली हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। माया श्रापित कर देती है, माया का काम ही ये है, इसलिए हर घड़ी सावधान सावधान बाबा हमेशा हमें कहते हैं। तो इससे क्या होगा, हम हल्के भी रहेंगे, खुशी भी हमारी बढ़ती जाएगी, और सेवा का जो पुण्य मिलेगा वो भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये जन्म तो हमारा सार्थक हो ही जाएगा, पर जन्म जन्म हमारे इतने सफल हो जाएंगे, जो बाबा कहते आधा कल्प आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पुण्य का खाता तुम बच्चे इस समय जमा करते हो, तो सभी कर रहे हैं ना पुण्य का खाता जमा, हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है, जो समझते मेरे पुण्य का खाता जमा हो रहा है हाथ उठाओ, सबका हो रहा है ना, हाँ बिल्कुल हो रहा है। अगर इस समय भी बाबा उठा ले तो तैयार हो ना, हाँ तैयार हो, तैयार हो, नहीं बाबा अभी नहीं मैं तैयार नहीं हूँ ऐसे तो नहीं कहोगे, हाँ एवर रेडी, वेरी गुड, एवर रेडी, क्योंकि सब कुछ अचानक होना है, अचानक होना है, इसीलिए एवर रेडी रहना ही पड़ेगा। परंतु हर वक्त एवर रेडी रहे उसके लिए बहुत काल का अभ्यास भी चाहिए, वो अभ्यास हमारा जरा भी कम ना हो, अगर अभ्यास थोड़ा भी कम हुआ माया देखेगी और फट से खींच लेगी। इसीलिए हमारा अभ्यास लगातार रहे, हमारी पढ़ाई पर ध्यान, याद पर ध्यान, हमारी धारणाओं पर ध्यान, सेवा पर ध्यान हर वक्त रहे, तो देखो माया की हिम्मत नहीं पड़ेगी हमारे नजदीक भी आने की और हम उड़ती कला का अनुभव करेंगे, सच्ची नेचर की ओर हमारी हो जाएगी और दो युग तक एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, एवर प्रॉस्परस, एवर सदा यही अनुभूति हमारी होगी। अच्छा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।